प्रिय श्रोताओं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ज़हरा ज़ैदी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
ज़िलहिज्जा महीने की 15 तारीख को सन 212 हिजरी कमरी में पवित्र नगर मदीना में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। इस शुभ अवसर पर हम आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं और इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रसिद्ध कथन है कि मैं तुम्हारे मध्य दो मूल्यवान चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अपने अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों को थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे और ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, यहाँ तक कि दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास आएँ।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र कुरान के बाद जो अहले बैत से जुड़े रहने पर बल दिया है, उसका एक कारण यह है कि महान ईश्वर और पैगंबर इस्लाम की इच्छा यह है कि लोग पवित्र कुरान को सीखने और सीधे रास्ते पर चलने के लिए अहले बैत को आदर्श बनाएं और उनका अनुसरण करें। इस आधार पर पैगंबर इस्लाम ने जिन हस्तियों को आदर्श बनाने और उनके अनुसरण की बात कही है, उनका स्थान बहुत ऊँचा है। जिस समय सत्य असत्य का पता न चले और असत्य सत्य के रूप में दिखाई दे, तो सत्य असत्य को पहचानने का बेहतरीन मार्ग कुरान और अहले बैत हैं। इस आधार पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जामे कबीरा नामक प्रसिद्ध ज़ियारत में इमामों को ईश्वरी कृपा का स्रोत, ज्ञान के खजाने, सच्चाई के मार्गदर्शक और अंधकार का चिराग कहते हैं।
हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की एक प्रसिद्ध उपाधि हादी अर्थात मार्गदर्शक है। उन्होंने अपने पिता हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 34 वर्षों तक लोगों का मार्गदर्शन किया और ये ईश्वरीय दायित्व निरंतर निभाया। इमाम हादी अलैहिस्सलाम के लोगों के मार्गदर्शन के काल में 6 अब्बासी शासकों का शासन था। इसी प्रकार इमाम हादी अलैहिस्सलाम के मार्गदर्शन के लगभग 13 वर्ष पवित्र नगर मदीना में गुजरे। ये वो काल था जब अब्बासी शासकों के मध्य सत्ता की खींचतान चल रही थी और इमाम ने इस अवसर का लाभ उठाकर इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान के प्यासे लोग हर ओर से इमाम के पास आते थे और ज्ञान के अथाह सागर के प्रतिमूर्ति से अपनी प्यास बुझाते थे। इमाम हादी अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और उनके अनुयायी ईरान, इराक, मिस्र जैसे विभिन्न देशों से और क्षेत्रों से उनकी सेवा में उपस्थित होकर या पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को इमाम के समक्ष रखते थे और उनका समाधान मालूम करते थे।
इसी तरह इमाम के प्रतिनिधि लोगों के मध्य थे और धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों के समाधान में वे लोगों और इमाम के मध्य संपर्क का साधन थे। पवित्र नगर मदीना में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दीन दुखियों और वंचितों से गहरा संबंध था और जिन लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना होता था और उन्हें कहीं कोई सहारा नहीं मिलता था, तो लोग उन्हें इमाम के घर की ओर जाने के लिए कहते थे और इमाम उन लोगों की सहायता करते थे। जो खुम्स ज़कात अर्थात विशेष धार्मिक राशि इमाम को दी जाती थी, अधिकतर वे उसे वंचितों की सहायता से विशेष कर देते थे।
कभी इमाम निर्धनों को इतना धन देते थे कि वे उससे कोई काम करें और आर्थिक स्वाधीनता के साथ अपने सम्मान की रक्षा करें। जो लोग यात्रा के दौरान रास्ते में फंस जाते थे, तो इमाम हादी अलैहिस्सलाम उनकी भी सहायता करते थे और इमाम ने कभी भी पवित्र नगर मदीना में किसी को भूखा सोने या किसी अनाथ को किसी अभिभावक के न होने के कारण आंसू बहाने का अवसर नहीं दिया। पवित्र नगर मदीना में इमाम हादी अलैहिस्सलाम की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि मदीने के गवर्नर में इस बात की क्षमता नहीं थी कि वो इमाम पर अपना कोई दृष्टिकोण थोप सके। इमाम हादी अलैहिस्सलाम का आध्यात्मिक व सामाजिक प्रभाव इस बात का कारण बना कि बुरैहा नाम का एक व्यक्ति, जिसे अब्बासी शासकों की ओर से मक्के और मदीने की निगरानी का काम सौंपा गया था, वो अब्बासी शासक मुतवक्किल के नाम पत्र में इस प्रकार लिखता है, यदि तुझे حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ چاہیے تو علی بن محمد یعنی امام ہادی کو ان دونوں نگروں سے باہر کر دے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی اور بلایا ہے۔ انتتہ 233 ہجری قمری میں امام ہادی علیہ السلام کو اپنے سپوتر امام حسن عسکری علیہ السلام اور پریوار کے دوسرے سدسیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر عراق کے سامرہ نگر میں رہنے پر وش کیا گیا۔ اس سمے سامرہ عباسی شاسکوں کی سرکار کا کیندر تھا۔ عباسی شاسکوں کی اور سے یحییٰ بن ہرثمہ نام کے ایک ویکتی کو امام ہادی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ 300 سینکوں کے ساتھ مدینے گیا۔ ہرثمہ کہتا ہے، میں مدینے گیا، شہر میں داخل ہو گیا، لوگ بہت دکھی اور پریشان تھے۔ دھیرے دھیرے یہ اپرسنتا اتنی ادھک ہو گئی کہ چیخ پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ امام ہادی کے جیون کے پرتی چنتت تھے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بڑی بھلائی کی تھی اور لوگ اپنے پاس امام کی موجودگی کو ایشوری کرپا و برکت کا کارن سمجھتے تھے۔ میں نے لوگوں کو شانت رہنے کے لیے کہا اور میں نے سوگند کھائی کہ امام کے ساتھ کسی پرکار کا ہنساتمک ویوہار نہیں کیا جائے گا۔ اتہاس میں آیا ہے کہ اس یاترا کے دوران یحییٰ بن ہرثمہ امام کا شردھالو بن گیا اور وہ دل سے امام کو چاہنے لگا۔
اتہاس اس بات کا ساکشی ہے کہ اموی اور عباسی شاسکوں نے اماموں کے استھان کو لوگوں کے دلوں سے ہٹانے کے لیے ایسا کوئی کاریہ نہیں تھا جو نہ کیا ہو، پرنتو کبھی بھی وہ گیان، جانکاری اور اماموں کی آدھیاتمک شریشتتا کو پربھاوت نہ کر سکے۔ اموی اور عباسی شاسکوں نے پوری مانوتا وشیش کر مسلمانوں پر یہ اتیاچار کیا کہ انہوں نے اسلامی سماج میں اہل بیت کے گیان کو پھیلنے نہیں دیا اور اس دشا میں وہ رکاوٹ بنے رہے۔ یہ کاریہ امام ہادی علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے کال میں ادھک تھا۔ اس کے باوجود امام ہادی علیہ السلام لوگوں کے مارگ درشن کے لیے ہر سمے و اوسر سے لابھ اٹھانے کا پریاس کرتے تھے۔
امام ہادی علیہ السلام 20 ورش 9 مہینے سامرہ میں رہے۔ یہ نگر بغداد کے اتر میں 130 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے۔ چونکہ امام ہادی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لانے کا متوکل کا لکش امام پر درشٹی رکھنا اور انہیں سماجک اور سانسکرتک گتیویدھیوں سے دور رکھنا تھا، اس لیے اس نے امام کو ایسے استھان پر رکھا جو اس کے لکش کے انوسار تھا۔ اسی کارن اس نے امام کو اس گھر میں رکھا جو سینک چھاؤنی اور وشیش سینکوں کے محلے میں تھا۔ جس مکان میں امام کو رکھا گیا وہ کارآواز سے کم نہیں تھا، کیونکہ سیوکوں اور درباریوں کے روپ میں جاسوسوں کو امام کی نگرانی کے لیے لگا دیا گیا تھا اور وہ امام کی سمست گتیویدھیوں پر پینی درشٹی رکھتے تھے اور ان گتیویدھیوں کو نینترت کرتے تھے اور ساری رپورٹ خلیفہ کو دیتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام کو سامرہ میں بہت کٹھنائی میں رکھا گیا اور انہوں نے بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا کیا، پرنتو انہوں نے کبھی بھی اتیاچاریوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور جتنے دن گزر رہے تھے لوگوں کے مدھے امام کا پربھاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کے جنم دیوس کی پاون بیلا پر شروتاؤ ایک بار پھر ہم آپ سب کو ہاردک بدھائی دیتے ہیں اور کاریکرم کا سماپن ان کے کچھ کتھنوں سے کر رہے ہیں۔
वे कहते हैं, परिपूर्णता के शिखर को तय करने की एक महत्वपूर्ण शैली ज्ञान की प्राप्ति है और इंसान ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर सकता। इमाम हादी अलैहिस्सलाम का मानना था कि उच्च मानवीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी और ज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई राही अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँचता है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त करने वाले दोनों मार्गदर्शन में भागीदार हैं।
यदि समाज के विद्वान और बुद्धिजीवी प्रयास न करें और समाज के सामान्य लोग भी ज्ञान प्राप्त न करें तो लोगों की सोच और सांस्कृतिक सतह पर कोई प्रगति नहीं होगी। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की दृष्टि में ईश्वर के अच्छे व भले बंदों की एक विशेषता लोगों की गलतियों को माफ़ कर देना है। अय्यूब बिन नूह कहता है कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने हमारे एक साथी के नाम पत्र में जो एक व्यक्ति की अप्रसन्नता का कारण बना था इस प्रकार लिखा कि जाओ अमुक व्यक्ति से माफ़ी मांगो और कहो कि यदि ईश्वर किसी बंदे की भलाई चाहता है तो उसे वो हालत प्रदान करता है कि जब भी उससे माफ़ी मांगी जाए तो वो उसे स्वीकार करता है, और तू भी मेरी गलती को स्वीकार कर।
अच्छे दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए उनके बारे में कड़ाई से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी गलतियों के संबंध में नरमी से काम लेना चाहिए और उनकी अनदेखी कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर इंसान छोटी छोटी बात पर अपने दोस्तों से कड़ाई से पेश आने लगे तो धीरे धीरे वो अकेला हो जाएगा और उसके विरोधियों की संख्या अधिक हो जाएगी। जबकि अच्छे दोस्त इंसान के जीवन में भुजा समान होते हैं। इस आधार पर जीवन में सफल होने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अच्छे दोस्तों की रक्षा करे और छोटी सी गलती पर उनसे नाता ना तोड़े, और पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों की जीवन शैली दूसरों की गलतियों की अनदेखी में उन्हें माफ़ कर देना रही है।